सभी लोग मैत्री पूर्ण नमो बुधाय जय भीम
जय भीम।
लोग कहाँ है? आ रहे हैं?
हाँ,
जल्दी हो, धीरे 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 आ रहे हैं। ओके, so yes, as Kumar Rajiv said, this is our last morning talk.
तो जैसे कुमार जी ने कहा, ये सुबह का हमारा आखिरी प्रवचन है।
I promise I won't leave you behind today.
तो मैंने ये कहा है कि वचन दिया है कि मैं आपको कोई पीछे नहीं छोड़ूंगा।
I think I went too fast yesterday and many of you didn't know what I was talking about.
कल मैं बहुत ही गति से आगे बढ़ा और मैं क्या कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया।
But today will be a simpler talk.
तो आज का जो प्रवचन है बहुत ही आसान होगा।
I hope people aren't staying away because they got confused yesterday.
तो कल लोग थोड़ा सा संभ्रमित हो गए हैं।
So yes, so over these last days, I've been seeing groups of people, particularly from outside Maharashtra.
और पिछले कुछ दिनों में खासकर महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग हैं, उनसे मैं मिल रहा था।
And I've been asking people, well, how they found this event.
और मैं उनसे पूछ रहा था कि ये जो हमारा शिविर है, उन्हें कैसा लगा?
And everybody so far has said they're really enjoying themselves.
और जहाँ तक सभी ने कहा कि इसका उन्होंने बहुत आनंद लिया है।
So well, that's not quite good enough for me.
लेकिन मेरे लिए इतना ही अच्छा नहीं है।
I want to know why. What is it that they've enjoyed?
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जिसका उन्होंने आनंद लिया है।
So, well, I've asked them to clarify what they mean by enjoying.
तो मैं उनको स्पष्ट करके पूछ रहा था कि जब ये कहते हैं कि उनको आनंद आया, तो ये कौन सी बात है जिसका उनको आनंद आया?
And the main thing that people say is that they've enjoyed the very friendly atmosphere.
और मुख्य बात लोगों ने बताई है, यहाँ का जो मैत्रीपूर्ण वातावरण है उसका उन्होंने आनंद लिया है।
They've enjoyed meeting so many people.
तो बहुत सारे लोगों को मिलना, इसका उन्होंने आनंद लिया है।
They've enjoyed the atmosphere of equality.
तो यहाँ के समता का जो वातावरण है,
they've
उसका उन्होंने आनंद लिया है।
They've enjoyed the fact that they can mix freely with so many people.
और इस बात का उन्होंने आनंद लिया कि मुक्तता से बहुत सारे लोगों के साथ मिलजुल सकते हैं।
Something that really impressed me was when I met the people from Kerala.
और खासकर केरल के लोगों को जब मैं मिला तो एक चीज से मैं बहुत ही प्रभावित हो गया।
Are they here now?
वे लोग यहाँ हैं अभी? केरल के लोग यहाँ हैं अभी?
The problem is that they don't speak either English or Hindi.
तो समस्या उनके लिए है, ना तो वो अंग्रेजी बोल सकते हैं ना हिंदी बोल सकते हैं।
And they can't easily communicate with other people.
और लोगों के साथ वे बड़े आसानी से बातचीत भी नहीं कर सकते।
And they said that when they first arrived, they felt just like leaving.
और उन्होंने बताया कि जब पहली बार वे यहाँ पहुँचे, तो उन्हें लगा कि बस अभी यहाँ से वापस जाना चाहिए।
Because nobody speaks Malayalam.
क्योंकि मलयालम कोई बोल नहीं सकता।
They don't speak English, they don't speak Hindi.
और वे अंग्रेजी बोल नहीं सकते, हिंदी बोल नहीं सकते।
What are we doing here?
तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं?
But they said by the next day, they didn't mind.
लेकिन दूसरे दिन फिर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा।
That even though they couldn't communicate, they didn't mind.
भले ही वो किसी से बातचीत नहीं कर सकते, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।
They'd really like to be able to talk to people, but that they can't.
वे चाहते कि सही में लोगों से बातचीत करें, लेकिन वो बात नहीं कर सकते।
But they really enjoyed the atmosphere, they said.
लेकिन यहाँ का जो वातावरण है उसका सही में उन्होंने आनंद लिया।
But they felt that they've been in very good friendship with people, even without words.
तो उन्होंने बताया कि भले ही कोई शब्द उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन इसके बावजूद लोगों से बड़ी मित्रता का भाव उनके मन में निर्माण हुआ।
And I think of all the people I've seen, they were the happiest bunch.
और जिन लोगों को मैं मिला हूँ, सभी लोग बहुत ही मतलब खुश थे, बहुत ही आनंदित थे।
I felt very proud of us then.
और मुझे उससे बड़ा अभिमान लगा।
I felt, well, if people can pick up on the friendliness without words, we must really be friendly.
अगर कोई शब्द न कहते हुए भी लोग मैत्री अगर यहाँ से लेते हैं, तो सही में ये बात है कि हम बहुत मैत्रीपूर्ण हैं।
And I thought also I was very proud of them.
और मुझे लगा कि मैं उनके बारे में भी मेरे मन में बहुत ही अभिमान आया।
They've come so far, not being able to speak.
वे इतने दूर से आए हैं और यहाँ बोल भी नहीं सकते।
But they want to be part of this NNBY.
लेकिन इसके बावजूद भी NNBY का
So they can't. They probably don't come because they can't understand my English. But I really want to rejoice in their merits. And if you see them, please show how much you appreciate them. But the fact that they could see the spirit of friendliness without words says that we've really achieved something here.
अभी कोई शब्द न कहते हुए भी मैत्री का ये जो भी वातावरण है चैतन्य है उन्होंने अनुभव किया तो सही में हमने कुछ तो यहाँ उपलब्ध किया.
And I promised them and I promised the people from Tamil Nadu that next year we will try to have an NNBY Parishad in the south.
और केरल के लोगों को और तमिलनाडु के लोगों को मैंने वचन दिया है कि अगली बार NNBY की परिषद जो है वो हम दक्षिण में रहेंगे.
But I can't go alone.
लेकिन मैं अकेला नहीं जा सकता.
I need at least 300 people coming with me.
कम से कम 300 लोग मेरे साथ वहाँ आने चाहिए.
And 300 enough?
No.
Maybe 1,000
people have to come. But yes, let's well have one in the south as well. And you can listen to Tamil and Malayalam and smile. Because you won't be able to understand. Just as they, the Keralans haven't been able to understand here. But it's wonderful that our NNBY is now spreading all the way through India. And what we're doing is exemplifying the spirit of Sangha.
तो हम क्या कर रहे हैं कि जो संघ का चैतन्य है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं.
Now in the Buddha Dhamma, the word Sangha has a quite different meaning to the meaning it has in modern Indian languages.
तो बुद्ध धर्म में संघ का एक बहुत ही अलग ऐसा अर्थ होता है जैसे कि हम आधुनिक भारतीय भाषाओं में संघ का अर्थ देखता है उससे अलग है.
In Hindi and Marathi and no doubt other languages, Sangha, it means something quite ordinary.
तो मराठी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में संघ का अर्थ जो है बहुत ही सर्वसाधारण है.
It just means a society or association.
तो जैसे कोई एक समाज है या कोई ऐसा एक इकट्ठा आना है.
But in Buddhism it has a quite definite and deep meaning.
लेकिन बुद्ध धर्म में इसका बहुत ही निश्चित और गहरा ऐसा अर्थ है.
It's that I want to talk about today.
तो आज मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ.
Because really NNBY is about Sangha.
क्योंकि सही में देखा जाए तो NNBY जो है ये संघ के बारे में.
We're trying to build a Sangha throughout India.
तो पूरे भारत में हम संघ निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं.
So what do we mean by Sangha in Buddhism?
तो बुद्ध धर्म में संघ जब हम कहते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है?
Well, first of all, we mean coming together with shared ideals.
तो पहली बात यह है कि हम इकट्ठा आते हैं और एक समान हमारा आदर्श होता है.
We all of us have come here for various reasons maybe.
तो हम यहाँ अलग अलग वजह से यहाँ आए हैं.
I don't know why all of you have come.
अब मैं नहीं जानता कि आप सारे लोग किस बात के लिए आए हैं.
But most of us have come because of Dr. Ambedkar and because of the Buddha Dhamma.
और बहुत सारे लोग इसलिए आए हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर है और बुद्ध धर्म है.
And we have ideals that we get from Baba Sahib.
और बाबा साहब से हमें जो आदर्श मिला है उसके लिए हम आए.
We want to see a casteless society in India.
हम चाहते हैं कि भारत में जाति विहीन समाज बने.
We want to see every individual able to fulfill him or herself.
तो हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उनका जो भी मतलब परिपूर्णता है वो प्राप्त कर सके.
So we come together, all of us having the same ideal.
तो हम सब लोग इकट्ठा है, हम सभी का एक समान आदर्श है.
It may not be very clear for all of us.
हो सकता है कि हम सभी लोगों को ये उतना स्पष्ट न हो.
We may be approaching from different angles.
हम अलग अलग दृष्टिकोण से उसकी तरफ देख रहे होंगे.
But there's enough of a common ideal among us for us to be united.
लेकिन इतना पर्याप्त रूप से हमारा समान आदर्श है ताकि हम एक हो सके, इकट्ठा आ सके.
And this common ideal has a big effect on the way we meet.
और ये जो सर्वसामान्य आदर्श है इसका बहुत बड़ा असर होता है जब हम इकट्ठा मिलते हैं आते हैं.
When you meet somebody else here, you know that they're interested in the same aims as you.
तो जब यहाँ आप किसी से मिलते हैं तब आप देखते हैं जैसे आपके उद्देश्य है उसी प्रकार के उद्देश्य में वह व्यक्ति भी रुचि रखता है.
They may not be very clear about them.
हो सकता है कि उसके बारे में वे उतने स्पष्ट नहीं होंगे.
They may not have taken the full meal yet. They're just tasting one or two bites.
तो पूरा भोजन उन्होंने शायद अभी नहीं लिया होगा. एक दो ग्रास जो है उन्होंने ग्रहण किए होंगे.
But you know that everybody here, yes, is meeting to learn about Baba Sahib, to learn about the Buddha Dhamma.
तो यहाँ सभी जो लोग आए हैं वो बाबा साहब के बारे में और बुद्ध धर्म के बारे में सीखने के लिए आए.
And you're wanting to learn about it because you believe this is a positive thing for you, a positive thing for others.
और आप ये इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि आपके लिए ये बात बहुत ही सकारात्मक है और अन्य लोगों के लिए भी ये बात बहुत ही सकारात्मक है.
So the first thing about a sangha is that it meets with common ideals.
तो संघ के बारे में पहली बात यह है कि एक समान आदर्श के लिए हम इकट्ठा आते हैं.
But the second thing about it is that a sangha meets in maitri.
तो संघ जो है दूसरी बात इसकी ऐसी है कि संघ मैत्री से इकट्ठा आते हैं.
When we come together, we have good feelings towards each other.
जब हम इकट्ठा आते हैं तो एक दूसरे के लिए हमारे मन में एक अच्छा भाव होता है.
But we care about each other.
हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं.
We see others as individuals.
हम औरों को व्यक्ति के रूप में देखते हैं.
We don't see them as representatives of some caste or other group.
तो हम किसी जाति के या किसी समूह के वे प्रतिनिधित्व कर रहे ऐसा हम नहीं देखते.
So yes, we meet with maitri.
तो हम मैत्री के साथ मिलते हैं.
Everybody we see, we want them to be happy. We want them to live happily.
हम जिस किसी से भी मिलते हैं हम चाहते हैं कि वो सुख से रहे, सुख से जीवन यापन करे.
And we meet as equal human beings.
हम एक समान व्यक्ति से, मानव से मिल रहे हैं, इस प्रकार से मिलते हैं.
So a sangha meets in maitri.
तो संघ मैत्री से ही मिलता है.
And it's not just that we wish each other well.
तो ये इतना ही नहीं कि हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हैं.
We take pleasure in each other.
हम एक दूसरे में आनंद लेते हैं.
We take delight in each other.
एक दूसरे में हम एक प्रकार से खुशी लेते हैं.
Sometimes Dhammashalin, well every morning Dhammashalin and I have breakfast together.
तो हर एक सुबह Dhammashalin और मैं इकट्ठा नाश्ता करते हैं.
We're sitting in that hut down there.
तो नीचे जो कुटी है वहाँ हम लोग बैठते हैं.
And we can just see through the bushes all of you out there.
तो वो जो भी मतलब वहाँ झुरमुट होते हैं वहाँ से सभी लोगों की तरफ हम देखते रहते हैं.
And we hear various things.
हम बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं.
जय भीम. We hear lots of laughing, lots of games, lots of talking.
तो हम देखते हैं कि बहुत सारा मतलब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और बहुत सारी बातचीत हो रही है.
And we just take delight in watching.
और केवल वो देखने में भी हम बहुत आनंद लेते हैं.
We're just enjoying all of you.
तो आप सभी लोग जो है उसका हम बहुत आनंद लेते हैं.
And taking a lot of pleasure in just seeing you.
तो आपको केवल देखने से हमें बड़ी खुशी होती है.
I hope some of you take pleasure in seeing us too.
तो आशा करता हूँ कि हमें देखकर भी कुछ लोगों को खुशी होती होगी.
That's our English breakfast.
ये हमारा अंग्रेजी नाश्ता है.
Most of you wouldn't think it was breakfast at all.
और कुछ लोग तो कहेंगे कि नाश्ता ही नहीं है.
But yes, we take delight in you.
तो हम आप में आनंद लेते हैं.
And I hope you take delight in us.
और आशा करते हैं कि आप भी हमें आनंद लेते होंगे.
I hope you take delight in each other.
और मैं आशा करता हूँ कि आपस में आप आनंद ले रहे हो.
Well, I see you taking delight in each other.
और मैं देख रहा हूँ कि आप एक दूसरे में आनंद ले रहे हैं.
This is sangha.
इसे संघ कहते हैं.
That's like our friends from Kerala. Well, they're taking delight in people even without being able to speak.
तो जैसे केरल के हमारे मित्र है लोगों के बीच में उस प्रकार से आनंद देखते हैं उसमें वे स्वयं आनंदित हो रहे हैं भले वो कोई शब्द नहीं बोल सकते.
And we meet also in harmony. A sangha meets in harmony.
तो संघ जो है सुसंवादिता से मिलता है.
I'm sure there have been some cross words on this event.
मैं जानता हूँ कि कुछ बार लोगों की मतलब कुछ अनबन हो गई है.
I haven't heard any myself.
मैंने स्वयं तो कुछ सुना नहीं.
But with so many people over such a length of time, it's inevitable there are some cross words.
अब इतने सारे लोग हैं इतने समय से तो कुछ ना कुछ अनबन हो सकती है.
But on the whole, people are speaking very friendly and pleasantly to each other.
लेकिन अगर पूरे रूप से देखा जाए तो लोग बहुत ही आनंदी हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे ढंग से बातचीत कर रहे हैं.
They're not quarreling, I hope.
आशा करता हूँ कि वे आपस में कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं.
True, not much quarreling.
तो सही है, कोई ज्यादा झगड़ा नहीं हो रहा है.
Some maybe, but not much.
थोड़ा वो थोड़ा होगा, लेकिन बहुत अधिक.
It's inevitable with so many people and perhaps particularly with young people.
और खासकर युवा लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, तो ऐसा तो हो सकता है.
Although old people are even more good at quarreling.
लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं, वो भी झगड़ा करने में बहुत ही अच्छे होते हैं.
But with young people, there's more energy in the quarrel.
लेकिन जो युवा लोग हैं, झगड़े में उनके पास ज्यादा शक्ति होती है.
Old people quarrel, but more slowly. Yes, so but on the whole, there's a very harmonious atmosphere here.
लेकिन अगर एक पूरे तौर पे देखा जाए तो बहुत ही सुसंवादित इस प्रकार का ये वातावरण है.
I can feel it.
मैं इसको महसूस कर सकता हूँ.
That's because we share ideals.
ये इसलिए होता है क्योंकि हम समान आदर्श आपस में बांटते हैं.
Even if we've got different views about those ideals, we share those ideals.
भले ही इन आदर्शों के बारे में हमारे अलग अलग विचार है, लेकिन ये हमारे समान आदर्श आपस में है.
That harmony is because we've got maitri for each other.
अभी तो समाज इसलिए है कि एक दूसरे के लिए हमारे मन में मैत्री का भाव है.
So, well, to that extent, this is a sangha.
और इस हद तक अगर देखा जाए तो ये संघ है.
And, well, yes, the Buddhist ideals are the three jewels.
और ये सही है कि बौद्ध के आदर्श जो है ये त्रिरत्न है.
A sangha in the Buddhist sense meets around the three jewels.
तो संघ जो है एक अर्थ से ये जो त्रिरत्न है इसके लिए इकट्ठा आता है.
These are the ideals that we have in common that make us a sangha.
तो ये आदर्श है जो हमारे लिए समान रूप से है, जिसके वजह से ही संघ निर्माण होता है, इसी के लिए हम इकट्ठा आते हैं.
So a Buddhist sangha meets around the ideal of the Buddha.
तो बौद्धों का संघ जो है बुद्ध का जो आदर्श है इसके लिए इकट्ठा आता है.
That's the ideal of human enlightenment.
तो मानवी बुद्धत्व का ये एक आदर्श है.
The ideal that we can all become like that.
तो ये ऐसा आदर्श है कि हम सभी लोग इसके समान बन सकते हैं.
And this is the best thing for us, the best thing for others.
तो ये हमारे लिए बिल्कुल उचित ऐसी बात है, औरों के लिए भी ये बहुत ही उचित ऐसी बात है.
A Buddhist sangha meets around the Dhamma.
तो बौद्ध संघ धर्म के लिए इकट्ठा आता है.
The Dhamma is the truth.
धर्म ये सत्य है.
The way life really is.
तो जैसा जीवन है वैसा हम यहाँ देख सकते हैं.
And it's the path that leads us to the Buddha.
और एक मार्ग है जो बुद्ध तक हमें ले जाता है.
And then a Buddhist sangha meets around the ideal of sangha.
और फिर बौद्धों का संघ जो संघ का आदर्श है इसके लिए इकट्ठा आता है.
You could say that the ideal of sangha is the ideal of a perfect society.
तो एक संघ का जो आदर्श है तो आप ऐसा कह सकते हैं एक परिपूर्ण समाज का आदर्श है.
It's the ideal of liberty, equality and fraternity at the highest level.
तो एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर स्वतंत्र समता और बंधुता का ये आदर्श है.
So a Buddhist sangha is meeting to try to realize those ideals.
तो बौद्ध संघ इकट्ठा आता है ताकि ये आदर्श को वे प्राप्त कर सके, आदर्श तक पहुंच सके.
We come together to try to make those ideals live.
तो हम इकट्ठा आते हैं ताकि इन आदर्शों को हम जिया जा सके, इस आदर्शों को हम जीवित कर सके.
We're trying to transform ourselves.
हम अपने स्वयं में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं.
We're trying to transform ourselves into the Buddha.
तो हम स्वयं को बुद्ध के रूप में परिवर्तित करते हैं.
That is to realize wisdom, compassion, that liberated energy.
तो इससे हम प्रज्ञा, करुणा और एक मुक्त हुई जो शक्ति है, वीर्य है, वो हम प्राप्त करते हैं.
We're trying to see the Dhamma.
हम धर्म को देखने का प्रयास करते हैं.
We're trying to see the way life really is.
तो सही में जीवन जैसा है वैसा उसको देखने का हम प्रयास करते हैं.
And we're trying to create the Sangha.
और हम संघ की निर्मित करने का प्रयास करते हैं.
That is the ideal society.
और वह एक आदर्श समाज है.
So that's what the Buddhist Sangha is.
तो इसे बुद्ध संघ कहते हैं.
I must say, you all look a little bit sleepy today.
आज ऐसा लग रहा है कि सभी लोग जैसे मानो नींद में है.
Yeah, you wide awake?
आप पूरी तरह से जागे हैं या नहीं?
Yeah, you were up late last night, I know. But anyway, I will go on. I will try to keep you alive. There is a few yawnings going on. We've got a long day today. But anyway, I should try to keep you amused from time to time. I didn't get a full night's sleep myself. But if I can think of any jokes, I will tell you to keep you lively. Because a Sangha is also happy. It's not all gambir and very serious. It's also very happy, very joyful. So even though we're all a little bit sleepy maybe, we'll try to keep lively too. So this is what a Sangha is. And in a way we've experienced something of Sangha here. It's going for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha that makes you a Buddhist. And going for refuge is a commitment, an act of commitment to those ideals. When you say Buddhang Saranam Gacchami, well, you're saying I'm going for refuge to the Buddha.
जब आप बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं बुद्ध के शरण जा रहा हूं
गच्छामि means going
गच्छामि का अर्थ होता है कि जाना
it's not something you just do once
तो ये ऐसी बात नहीं जो आप एक ही बार करते हैं
you do it day by day minute by minute moment by moment
तो ये हर दिन हर क्षण आप करते रहते हैं
it's not just a question of saying the words
तो केवल शब्दों को कहना इतना ही पर्याप्त नहीं है
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. But your mind is somewhere else completely.
तो आप ये कहते हैं लेकिन आपका मन कहीं दूसरी तरफ होता है.
Going for refuge is something you do, an effort that you make in every moment of your life.
तो शरण गमन करने का मतलब होता है कि आप जीवन में हर बार कुछ कृति करते हैं, कुछ प्रयास करते रहते हैं.
In every moment of your life, you try to move yourself. Closer and closer to the Buddha.
तो जीवन के हर क्षण आप अधिक अधिक बुद्ध के समीप जाते रहते हैं.
In every moment of your life, you try to shift your mind, change your mind.
और हर समय अपने मन को जो है आप परिवर्तित करते रहते हैं, मन को आप एक प्रकार से आकार देते रहते हैं.
And of course, that means that you're going closer and closer to the Buddha.
और इसका अर्थ ऐसा होता है कि बुद्ध के आप अधिक अधिक आप
As you go for refuge more and more fully, you come closer and closer to the Buddha. And as you go closer and closer to the Buddha, your experience of the Sangha becomes deeper. So this means that Sangha exists on different levels. So I want to explore four different levels on which Sangha exists. And we can see better what we need to do. If we want to create that ideal society, we need to move through these levels of Sangha.
अगर हम एक आदर्श समाज बनाना चाहते हैं तो संघ के ये जो स्तर है इस माध्यम से हमें आगे बढ़ना होगा
Well, the first level is what we call cultural sangha.
तो पहला स्तर जो है जिसको हम एक सांस्कृतिक संघ कहते हैं
That's the sangha of all those who just call themselves Buddhists.
तो ये ऐसा संघ होता है जहाँ सभी लोग
They're not necessarily trying to practice the Buddha Dhamma. But they feel that they're Buddhists. They call themselves Buddhists. They have Baba Sahib and the Buddha on the wall. At least in the front room. In the kitchen. Somebody else may be there. but yes, they feel they're Buddhists.
लेकिन उन्हें लगता है कि वे बौद्ध है
एंड they will sign themselves as Buddhists
और वो बौद्ध के रूप में अपनी सही करते हैं
they'll have their marriages according to the Buddhist ceremony
और जब भी विवाह होते हैं तो बौद्ध पद्धति से होते हैं
and all the ordinary ceremonies of life will be Buddhist
और जीवन के जो भी सर्वसामान्य विधि है वो सब बौद्ध के ही ढंग से होते हैं
this is sangha at a certain level
तो ये एक स्तर का संघ है
it's a good thing
ये अच्छी बात है
and it's probably what the majority of Buddhists in India where they really are
और शायद बहुत बड़ी संख्या में भारत के जो बौद्ध है वे इसी स्तर पर है
it's a positive identity
तो एक प्रकार की सकारात्मक उनकी वे पहचान यहाँ दिखाते
but it doesn't involve a much practice
लेकिन यहाँ बहुत अधिक आचरण नहीं होता है
but there's a self-identification as a Buddhist
लेकिन स्वयं की पहचान एक बौद्ध ग्रुप में यहाँ है
a feeling of belonging to a Buddhist community
और एक बौद्ध समाज के हम लोग है इस प्रकार का भाव वहाँ पर में है
बस But and engaging in Buddhist ceremonial and so on.
तो बौद्धों की जो भी विद्या है उसमें वे शरीक होते हैं और ऐसा ही कुछ करते रहते हैं.
And as far as it goes, it's a good thing.
तो जहाँ तक ये जाता है ये अच्छी भी बात है.
It would be better if more people became Buddhists in this sense.
तो ये बहुत अच्छा होगा कि सत्य से भी बहुत सारे लोग बौद्ध बनते हैं.
But it's not enough.
लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है.
There's no real effort to grow on the path.
तो मार्ग में स्वयं का विकास करने के लिए कोई प्रयास यहाँ नहीं किया जाता.
If you often come across people and they say, I'm a born Buddhist.
और अक्सर आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं वे कहते हैं कि मैं जन्म से बौद्ध हूँ.
That means that their parents were Buddhists.
इसका अर्थ उनके माता पिता बौद्ध थे.
And they were born into a Buddhist family, into a Buddhist culture.
तो बौद्ध परिवार में बौद्ध संस्कृति में उनका जन्म हुआ है.
You often get this in the Buddhist East.
और खासकर पूर्व के बौद्ध राष्ट्रों में आप ये देखते हैं
If you go to Thailand or Sri Lanka, people will say, we are born Buddhists.
तो थाईलैंड और श्रीलंका में आप अगर जाते हैं तो कहेंगे हम जन्म से ही बौद्ध हैं.
And there's an implication that I'm a convert to Buddhism, so I'm not a proper Buddhist.
और इस प्रकार से वो कहना चाहते हैं मानो कि आपने धर्मांतरित करके बौद्ध बने तो आप कोई सही उचित बौद्ध नहीं है.
You have to be born a Buddhist to be a real Buddhist.
तो सही बौद्ध होने से बौद्ध के रूप में आपने जन्म लेना चाहिए.
So I hope that I do good deeds in this life and next time I can be born in Thailand.
तो मैं आशा करता हूँ कि मैं कुछ अच्छे कर्म इस जीवन में करूँ ताकि थाईलैंड में मेरा दूसरा जन्म हो.
So this is a very a primary level of being a Buddhist.
तो ये बहुत ही प्राथमिक स्वरूप का स्तर है बौद्ध होने का.
But in a way, yes, it's a good thing.
एक अर्थ से ये बात भी अच्छी बात है.
But you're not really a Buddhist until you start to practice Buddhism.
लेकिन तब तक आप बौद्ध नहीं होते हैं जब तक आप बुद्ध धर्म का आचरण शुरू नहीं करते.
बाबा साहब was very aware of this himself.
बाबा साहब स्वयं इसके बारे में बहुत ही जागरूक थे.
That's why he gave the 22 pratigyas.
और इसीलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी.
Because he wanted people to take the Dhamma seriously.
वे चाहते थे कि लोग धम्म को गंभीरता से ले.
He saw in the Buddhist East that the whole country in Thailand is more or less the whole country is Buddhist.
अभी थाईलैंड में पूर्व में उन्होंने देखा कि पूरा एक राष्ट्र जो है वो बौद्ध है.
But all that means is that they go to the temples and offer.
तो इसका इतना ही अर्थ होता है कि विहार में वे जाते हैं और कुछ अर्पण करते हैं.
That they make offerings to the monks.
तो वो जो भिक्षु है उनको कुछ वे अर्पण करते हैं.
But it doesn't go much further than that.
लेकिन इससे बातें कुछ आगे नहीं बढ़ती.
So Baba Saheb said this is not enough.
तो बाबा साहब कहते हैं इतना ही पर्याप्त नहीं है.
He didn't want his people to become Buddhists merely in that cultural sense.
तो वे नहीं चाहते थे कि केवल सांस्कृतिक अर्थ से ही उनके लोग इसी प्रकार के बौद्ध बने.
Yes, they need to be Buddhists in that cultural sense.
तो एक सांस्कृतिक ढंग से भी उनका बौद्ध होना जरूरी है.
But they need to go further.
लेकिन इससे भी वे आगे बढ़ना चाहिए.
Unfortunately, the fact is that many people who did convert or their descendants haven't gone much further.
लेकिन दुर्भाग्यवश जिन लोगों ने धर्मांतर किया या उनके जो बच्चे हैं वो अधिक आगे नहीं बढ़े.
A part of the purpose of our NNBY is to get people to go further.
और NNBY का एक काम ये है कि लोगों को इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए मदद करना.
We want those who are already Buddhists to take Buddhism more seriously.
और हम चाहते हैं कि जो पहले से ही बौद्ध है बुद्ध धर्म को वे गंभीरता से ले.
And we want those who are not Buddhists to become Buddhists.
और जो बौद्ध नहीं है हम चाहते कि वे बौद्ध बने.
But we want them to become Buddhists in a more deep and serious sense.
लेकिन हम चाहते कि वे बौद्ध बने एक गंभीर अर्थ से काफी गंभीरता से इसको ले।
बाबा साहब वाज वेरी क्लियरली अवेयर ऑफ दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्चरल बुद्धिज्म एंड अ मोर कमिटेड बुद्धिज्म।
तो बाबा साहब इस फर्क को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि सांस्कृतिक स्तर पर बौद्ध बनना और जो बहुत ही प्रतिबद्ध हुआ है ऐसा बौद्ध बनना।
बट स्टिल देयर इज अ कल्चरल संघ।
लेकिन इसके बावजूद एक सांस्कृतिक संघ वहाँ है।
इट्स इफ यू लाइक इट्स ऑल बुद्धिस्ट्स अ पार्ट ऑफ दिस कल्चरल संघ।
तो आप चाहे तो ऐसा देख सकते हैं कि सारे बौद्ध जो है इस सांस्कृतिक संघ के एक सभासद हैं।
एंड दोज ऑफ अस हियर हु आर बुद्धिस्ट वी कैन फील वी हैव एन आइडेंटिटी with people in Japan, in China, in America, all over the world.
तो अभी यहाँ जो बौद्ध है तो फिर जापान, चीन, अमेरिका जहाँ कहीं भी बौद्ध है उनको हम इस प्रकार से संघ में देख सकते हैं।
We share a culture with them.
तो हम एक संस्कृति आपस में इनके साथ बांटते हैं।
We're part of the same Buddhist Sangha in this most general sense.
तो एक सरल सामान्य अर्थ से देखा जाए तो हम सारे एक ही संघ के लोग हैं।
But it needs to go further.
लेकिन ये और भी आगे जाना चाहिए।
In a way, you're not really a Buddhist until you start to practice the Dhamma actively in your life.
तो एक अर्थ से तब तक आप बौद्ध नहीं है जब तक आप जीवन में सक्रिय रूप से धर्म का आचरण नहीं करते।
That is where you start to transform your mind in the way that we've been talking about.
और इसका अर्थ ऐसा होता है कि जो कुछ हम चर्चा कर रहे थे उस प्रकार से मन को आप परिवर्तन करना शुरू करते हैं।
So to be a Buddhist in a deeper sense means committing yourself to going for refuge more and more deeply.
तो एक प्रतिबद्ध रूप से बौद्ध होने का अर्थ ऐसा होता है कि आप बहुत ही गहरा अधिक अधिक शरण गमन करते हैं।
And the sangha in a deeper sense comes from this.
और संघ एक गहरे अर्थों से देखा जाए तो इसी से वह निर्माण होता है।
But first of all, you do this in a provisional sense.
तो एक प्रकार से एक तात्कालिक रूप में ये बात आप करते हैं।
You sort of try it out.
तो आप उसको मतलब एक प्रकार से करके देखते हैं।
This may be the position of many of you here.
तो हो सकता इसी प्रकार की कुछ स्थिति आप में से बहुत सारे लोगों की होगी।
You go into the meditation hall.
आप ध्यान के हॉल में जाते हैं।
Kumar Ajiv tells you to watch your breath.
और कुमार जी आपको बताते हैं कि सांस की तरफ ध्यान दीजिए।
He shows you how to watch your breath, not wash your breath, watch your breath.
और सांस को किस प्रकार से देखना है ये आपको पढ़ाते हैं।
He shows you how to develop Maitri.
और मैत्री का विकास कैसे करें वो आपको बताते हैं।
And you make an effort.
और फिर आप प्रयास करते हैं।
You make an effort to transform your mind.
और आप प्रयास करते हैं कि अपने मन में किस प्रकार से परिवर्तन लाएं।
So you are going for refuge more deeply in a provisional sense.
तो एक तात्कालिक स्वरूप में देखा जाए तो आप शरण गमन यहाँ कर रहे हैं।
For the time being, you're making that effort.
तो एक कुछ समय के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं।
Later, well, you may think about other things.
और फिर बाद में आप अन्य चीजों के बारे में सोचते हैं।
So when conditions are right, you make that effort.
और जब सही परिस्थिति होती है तब आप इस प्रकार से प्रयास करते हैं।
When you remember, you make that effort.
जब आपको याद आता है तब आप इस प्रकार से प्रयास करते हैं।
When a number of us are making this effort together, a provisional sangha comes into being.
और जब बहुत सारे लोग इकट्ठा इस प्रकार का प्रयास करते हैं तो एक तात्कालिक संघ की वहाँ निर्मित होती है।
And I think that's what's happening here.
और मुझे लगता है यही बात यहाँ हो रही है।
We get some experience of sangha.
तो यहाँ हम कुछ संघ का अनुभव ले रहे हैं।
That is an experience of sangha beyond the cultural.
तो ये जो संघ का अनुभव है ये संस्कृति के भी परे है।
Because most of us are making some effort to transform ourselves, a provisional sangha comes into being.
तो हर एक व्यक्ति हम में से अपने मन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है इसलिए एक प्रकार का एक हमने तात्कालिक संघ बनाया।
For some of us it's just something we're experimenting with.
तो कुछ लोग कुछ इस पर प्रयोग कर रहे हैं।
We're saying, well, do we want this? Is it a good thing?
और वे सोच रहे हैं कि क्या मुझे चाहिए ये अच्छी बात है।
Is there any truth in this?
क्या इसमें कोई सत्य है?
For some of us, it's just that we can't do it unless we've got the right conditions.
और कुछ लोग ले शायद होगा कि हम नहीं कर सकते जब तक उचित परिस्थिति ना हो।
If we're to make an effort, we need the right conditions around us.
अगर हमें प्रयास करना है तो हमारे आसपास सही परिस्थिति हो।
I'm sure many of you will find this.
मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को देखेंगे।
Here you can make an effort in meditation.
तो यहाँ ध्यान के लिए आप प्रयास कर सकते हैं।
It'll be much more difficult when you go home.
लेकिन जब आप घर में जाएंगे तो ये बात आपके लिए और भी कठिन हो जाएगी.
There's so much more noise, so much more distraction.
तो बहुत सारा आवाज होते रहता है, बहुत सारी विचलित करने वाली बातें हैं.
Somebody will say to you, "What are you doing sitting there? Do something."
और कोई आके कहेगा कि ये बैठ के क्या कर रहा है, कोई काम धंधा कर दो.
Or the children will be running all around the place in the house.
और घर में बच्चे इधर उधर दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे.
Somebody will be knocking pots together while they're cooking.
और कोई अगर खाना बना रहा है तो बर्तनों का आवाज करते रहेंगे.
And you can't count two breaths.
और आप दो सांस भी नहीं गिन सकते.
So it'll be much more difficult.
तो ये आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा.
And you'll forget.
और आप भूल जाएंगे.
You'll say, "Every day I will meditate."
और आप कहते हैं कि हर दिन मैं ध्यान करूंगा.
And then you forget the next day.
और दूसरे दिन ही भूल जाते हैं.
But here we've got the supportive conditions.
लेकिन यहाँ आपको मदद करने वाली परिस्थिति मिली है.
And while those conditions are there, you can go for refuge.
और जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो आप शरण गमन कर सकते हैं.
But your commitment to the three jewels is not strong enough to support that going for refuge outside this situation.
लेकिन अभी आपका ये जो प्रतिबद्धता है उतनी मजबूत नहीं है कि ऐसी जो मदद करने वाली परिस्थिति है उसके बाहर भी आप उसको बनाए रखें.
Perhaps you're not clear enough about what the Dhamma means.
तो शायद आप धम्म का क्या अर्थ है उसके बारे में उतने स्पष्ट नहीं हुए.
Perhaps you've got other interests and goals in your life.
हो सकता है जीवन में कुछ दूसरी रुचियां, दूसरे ध्येय आपके पास होंगे.
Or perhaps you just haven't got enough willpower, if you like.
हाँ, यह हो सकता है उतनी इच्छा शक्ति आप में निर्माण नहीं हुई.
So you can make an effort, but when the circumstances are right.
तब आप प्रयास कर सकते हैं जब उस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होती है.
And many of you will find this is your case.
और आप देखेंगे कि इस प्रकार की बात बहुत सारे लोग महसूस करेंगे कि उनके साथ हो रही है.
So this is what we call provisional going for refuge.
हम इसको एक तात्कालिक मतलब शरण गमन कहते हैं.
And it's a definite and important step.
और ये निश्चित ही एक महत्वपूर्ण कदम आप उठाते हैं.
You're really wanting to say, "Well, I will make an effort whenever I can."
तो आप कहते हैं कि जब भी मैं प्रयास कर सकूंगा मैं प्रयास करने का प्रयास करूंगा.
And I will try to put myself in situations where I can make an effort.
तो ऐसे परिस्थिति में मैं स्वयं को डालूंगा जहां मुझे प्रयास करना संभव होगा.
So yes, I think we've all had an experience of this.
तो मुझे लगता है कि इसका हम सभी लोग अनुभव लेते हैं.
Because we're personally making an effort, something comes into being amongst us.
और जब हम व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रयास करते हैं तो कुछ तो हमारे बीच में ऐसा निर्माण होता है.
This is an important experience.
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अनुभव है.
And we in our TBMSG offer an opportunity for people to make a definite step in their provisional going for refuge.
और हम त्रैलोक के बुद्ध महासंघ सहायगण में लोगों को ऐसा मौका देते हैं ताकि निश्चित प्रकार से वो कदम उठा सके.
You know that many of us are from Trailokya Buddha Mahasangha.
आप जानते हैं हम में से कुछ लोग जो है वो त्रैलोक्य बुद्ध महासंघ से है.
NNBY isn't a TBMSG organization.
लेकिन NNBY जो है ये TBMSG कोई संगठन नहीं है.
We welcome people from many different practice traditions.
तो अलग अलग प्रकार के जो आचरण करने वाली परंपरा है उन सभी से लोगों को हम यहाँ उनका स्वागत करते हैं.
We don't say you have to be with us.
हम ये नहीं कहते कि आपको हमारे साथ ही होना चाहिए.
But the main initiative for NNBY has come from TBMSG people.
लेकिन मुख्य जो मतलब अगुवाई लोगों ने ली है वो TBMSG के लोगों से ज्यादा आई है.
Although others have also worked with us.
लेकिन और भी अन्य लोग हैं जो हमारे साथ कार्य करते हैं.
But in our sangha, we offer people the chance to make a deeper step.
लेकिन हम हमारे संघ में लोगों को मौका देते हैं ताकि और भी गहराई में वे अपना कदम उठा सकें.
And that step is becoming a Dhamma Mitra.
और वो कदम होता है धम्म मित्र बनना.
I'm going to say more about this tonight.
तो आज की रात में इसके बारे में अधिक कुछ कहने वाला हूँ.
If anybody is still awake.
तो अगर कोई जागा होगा तो सर.
There's still a few yawns and a few heads going onto her shoulders.
तो कुछ लोग अभी ऐसे नींद ले रहे हैं और बहुत ही उनको उबास आ रही है.
Yes, I'll say more about what we mean in TBMSG by Dhamma Mitra.
तो मैं इसके बारे में अधिक कहने वाला हूँ कि जब श्रेणों के बौद्ध महासंघ सहायगण में हम धम्म मित्र कहते हैं वो क्या होता है.
But when you become a Dhamma Mitra, you're saying I commit myself as far as I can to going for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha.
तो जब आप धम्म मित्र होते हैं तो आप इतना प्रतिबद्ध होते हैं कि जितना मुझसे संभव होगा उतना मैं बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता हूँ.
And if you want to take that step with us, we welcome you.
अगर आप हमारे साथ ये कदम उठाना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे.
If you want to make it with another sangha, we congratulate you.
अगर आप कोई अन्य संघ के साथ करना चाहते हैं तो हम आपका अभिनंदन करेंगे.
We're with you there too.
हम तब भी आपके साथ होंगे.
We don't think we're the only good sangha.
हम ऐसा नहीं समझते कि हम ही एक अच्छा संघ है.
The world needs many, many different sanghas.
जगत को बहुत सारे अलग अलग संघों की जरूरत है.
They need to cooperate together.
और उनका आपस में सहकार होना भी बहुत जरूरी है.
But yes, if you want to take a step with us, you can become a Dhamma Mitra under certain conditions.
अगर हमारे साथ आप कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप धर्म मित्र बन सकते
हैं. I'm not going to say more about that now because my purpose is simply to locate that in this scheme of going for refuge.
तो मैं इसके बारे में अधिक नहीं कहूंगा, केवल ये शरणगमन करने के जो मतलब मुद्दा है उसमें ये बात मैं कहना चाहता
हूं. A Dhamma Mitra is somebody who's committing themselves to going for refuge as much as they can given their circumstances and conditions.
तो धर्म मित्र वह व्यक्ति होता है कि वह जितना उसे संभव हो उतना शरणगमन करता है अगर उसको उचित परिस्थिति प्राप्त होगी.
At least they're going for refuge provisionally.
कम से कम तात्कालिक रूप से वे शरणगमन करते हैं.
And they form a provisional sangha.
और एक प्रकार का तात्कालिक संघ वे निर्माण करते हैं.
It's not enough.
इतना पर्याप्त नहीं है.
Because you're only going for refuge when you can.
तो जब आपको संभव है तभी आप शरणगमन करते हैं.
But you've got a long journey to get to the Buddha.
लेकिन बुद्ध तक जाने के लिए अभी बहुत ही लंबी यात्रा
है. And a huge amount of effort is required.
और उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम की प्रयासों की आवश्यकता है.
All your energy is required to get to the Buddha.
आपकी पूरी शक्ति उसके लिए चाहिए वहां पहुंचने के.
So you need to convert your provisional going for refuge into what we call effective going for refuge.
तो फिर आपका ये जो तात्कालिक शरणगमन है जिसको हम परिणामकारक शरणगम कहते हैं इसमें इसको परिवर्तित करना होगा.
So that means you're able to put your attraction to the Buddha Dhamma and Sangha into effect.
तो बुद्ध धम्म संघ का ये जो आकर्षण है उसको एक प्रकार से परिणामकारक रूप से आप उसको तब्दील करते हैं.
You're not just saying I want to go to Buddha Gaya.
तो आप इतना ही नहीं कहते कि मुझे बुद्ध गया जाना है.
You're actually getting the reservation, going to the station and getting on the train.
So aap reservation karte hain, station mein jaate hain aur train pakadte hain.
Provisionally, well, you go a little way to Buddha Gaya and then you get off.
So tatkalik mein kya hota hai ki thoda aap Buddha Gaya ki taraf jane ke liye nikalte hain lekin aap wapas aa jaate
hain. And then later you make the journey a little bit further.
और फिर उसके बाद थोड़ा आप यात्रा आगे तक ले जाते हैं.
Then sometimes you go back home again.
और फिर से आप घर वापस आ जाते हैं.
But when you're effectively going for refuge, slowly, slowly, dhiri dhiri, you're moving towards the Buddha.
लेकिन परिणामकारक शरणगमन जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आप बुद्ध की तरफ बढ़ते जाते हैं.
And although of course you are going to slide backwards, the overall movement is forwards.
तो भले ही कभी कभी आप फिर से पीछे आएंगे लेकिन आपकी सारी जो क्रिया होती है शक्ति जो केवल आगे बढ़ते रहने के लिए होती है.
It's a bit like trying to climb a cliff.
तो जैसे हम किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ रहे हो.
And you climb up a bit.
तो आप थोड़ा आगे चढ़ते हैं.
And then you slip down a bit.
तो थोड़ा फिर से नीचे घसर जाते हैं.
But you keep on trying to climb up.
लेकिन आप फिर से आगे बढ़ने के लिए चढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं.
Overall, your going for refuge to the three jewels is effective.
तो पूरा अगर आपका शरणगमन देखा जाए तो परिणामकारक होता है.
You actually are practicing, you're following the path.
तो सही में मार्ग पर आप चल रहे हो.
You're not perfect.
तो यहाँ परिपूर्ण नहीं है.
Definitely you're not perfect.
निश्चित ही आप यहाँ परिपूर्ण नहीं होते.
You've got a long way to go before perfection.
तो परिपूर्ण होने के लिए आपको बहुत बड़ा फासला जो है तय करना पड़ेगा.
But you're continuously making an effort.
लेकिन निरंतर रूप से वहाँ आप प्रयास करते रहते हैं.
An effort to keep your eyes open in some cases. That's effective going for refuge. And if a number of people effectively going for refuge form an effective sangha.
और बहुत सारे लोग जब इस प्रकार से परिणामकारक शरणगमन करते हैं तब परिणामकारक संघ की निर्मिति करते हैं.
Because it's made up of people who are effectively going for refuge, it's a much stronger sense of harmony.
और जब परिणामकारक संघ होता है, परिणामकारक शरणगमन होता है, तो एक बहुत ही गहरे सुसंवाद का वह अनुभव होता है, एहसास होता है.
And that's what we consider our Trilokya Bodh Mahasangha is.
और हम समझते हैं कि यही हमारा त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ है.
It's an effective sangha, we hope.
तो हमें आशा है कि ये हमारा
We're careful to select people on the basis of whether they're effectively going for refuge or not.
तो हम बहुत ही ध्यान से लोगों को चुनते हैं इस बात पर कि सही में वे परिणामकारक शरणगमन कर रहे या नहीं कर रहे.
We test them.
हम उनकी परीक्षा करते हैं.
We train them.
हम उनको प्रशिक्षण देते हैं.
And it's a long process.
और ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है.
Yes, some people here are still in that process. It's a long one.
तो यहाँ आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबी प्रक्रिया में अभी शामिल हैं.
And if you live in the United States of America, it's an expensive one too.
और अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो ये बात और भी खर्चीली हो जाती है.
Because you need to get away on retreat.
क्योंकि आपको शिविर में जाने के लिए कुछ समय निकालना पड़ता है.
So we test people quite carefully to see whether they are genuinely making an effective effort.
तो हम लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं कि सही में वे लोग परिणामकारक प्रयास कर रहे हैं क्या, परिणामकारक चरणगमन कर रहे हैं क्या, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं क्या.
We're not perfect.
हम परिपूर्ण नहीं है.
I'm not perfect.
मैं परिपूर्ण नहीं हूँ.
I don't know about Imogaji.
मैं परिपूर्ण नहीं.
I don't know about Kumaraji. Ah, Kumaraji is perfect. Fortunately, that's why he's sitting near the Buddha. Actually, I'll tell you a secret. I spoke to Kumaraji this morning. He's not perfect.
तो मैं सीक्रेट आपको बताना चाहूँगा. सुबह मैं कुमारजी से बात कर रहा था और मुझे पता चला वो परफेक्ट नहीं है.
True.
सही है.
Yeah, true. Yeah, we're not perfect.
तो हम कोई परिपूर्ण नहीं है.
But generally speaking, we are consistently making an effort to practice the Buddha Dhamma.
लेकिन सरल साधारण रूप से देखा जाए तो निरंतर रूप से बुद्ध धर्म संघ की तरफ परिणामकारक रूप से जाने का हम प्रयास कर रहे हैं.
And a very special feeling comes between us.
और हमारे बीच में बहुत ही विशेष प्रकार का एक भाव निर्माण होता है.
It's difficult to describe.
उसका वर्णन करना बहुत कठिन है.
But when you meet another member of the order, you feel a very deep connection with them.
तो जब आप संघ के अन्य सभासद से मिलते हैं तो उनके साथ एक बहुत ही गहरा संबंध आप महसूस करते हैं.
They may come from a completely different culture from your own.
तो आपकी संस्कृति से वो बहुत ही अन्य ऐसे संस्कृति से आते होंगे.
I said recently, I remember first meeting Amoga City.
तो मुझे याद है कि पहली बार जब मैं अमोक सिद्धि से मिला.
And I remember the strength of connection between us.
और मुझे याद है कि हमारे आपस में एक जो संपर्क है वो कितना मजबूत है.
Our lives could not have been more different.
तो हमारा जीवन कोई बहुत अलग नहीं हो सकता.
I come from the west.
मैं पश्चिम से आता हूँ.
My family were not rich, but they were always quite comfortable.
तो मेरा जो परिवार है अमीर तो नहीं था लेकिन बहुत ही आराम से था, ठीक था.
My father was an officer in the British Navy.
तो ब्रिटिश नेवी में मेरे जो पिता है वो अफसर थे.
So and I went to a good school.
और अच्छे स्कूल में मैं गया.
Well, Amoga Siddhi came from a very different background.
और अमोघ सिद्धि उनकी जो पार्श्वभूमि बहुत ही अलग है.
He came from quite a poor background in Nagpur.
तो नागपुर के बहुत ही गरीब परिवार से भी आए.
And well, I won't tell his story.
तो उनकी कहानी को मैं बताऊंगा.
He can tell that himself sometime.
तो किसी दिन मुझे स्वयं बताएं.
But we seem to understand each other very, very deeply.
लेकिन हम गहराई से एक दूसरे को समझ सकते हैं.
Because we shared the same effective going for refuge.
क्योंकि हम दोनों जो परिणामकारक शरणगमन है वो आपस में बांटते हैं.
And I'd say that with so many other members of the order that I've met.
और ऐसे बहुत सारे संघ के सभासद हैं जिनको मैं मिला हूँ उनके बारे में भी मैं ये कह सकता हूँ.
We don't believe we're the only effective sangha.
हम ऐसा नहीं मानते कि यही संघ है जो परिणामकारक है.
If we were the only one, the world would be in a bad state.
अगर बानो हम ही एक होते तो जगत की अवस्था बहुत बुरी होती.
And we've got no argument with anybody else from other sanghas.
तो अन्य जो संघ है उनसे भी कोई हम इस प्रकार से असहमत नहीं है.
But I just wanted to tell you about that experience from my point of view.
तो मेरे दृष्टिकोण से जो मेरा अनुभव है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ.
So, yes, an effective sangha is a community of people who go for refuge effectively together.
तो परिणामकारक संघ यानी इस प्रकार के लोग जो इकट्ठा मिलकर परिणामकारक शरणगमन करते हैं.
You can still fall back.
आप फिर भी पीछे आ सकते हैं.
You may give up the spiritual life even.
आप अपना आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते.
If you don't keep trying to climb the cliff, you will slip back.
तो पर्वत की चोटी पर चलते हुए अगर आप बने नहीं रहते तो आप पीछे मतलब लुढ़क सकते, नीचे गिर सकते हैं.
So effective going for refuge is reversible.
तो परिणामकारक शरणगमन जो है वो पीछे भी आ सकता है.
But if you go for refuge more and more, it becomes irreversible.
लेकिन आप अधिक अधिक शरणगमन करते रहेंगे तो फिर आप पीछे नहीं आएंगे.
And you just go forward without, in a sense, making any effort.
और फिर बाद में आप आगे ही बढ़ते रहते एक प्रकार से कोई प्रयास न करते हुए भी आप आगे ही जाते रहे.
This is real going for refuge.
ये सही शरण गमन है.
दिस इज द संघ एज अ रेफ्यूज.
तो संघ एक प्रकार का आपका शरण होता है.
प्रोविजनल कल्चरल प्रोविजनल एंड इफेक्टिव गोइंग फॉर रेफ्यूज इजंट अ रेफ्यूज.
तो तात्कालिक और जो सांस्कृतिक है और परिणामकारक है सही में शरण नहीं है.
Well, if for instance take myself.
अभी उदाहरण के लिए मुझे ले लीजिए.
I believe that on the whole I'm effectively going for refuge.
तो मेरा विश्वास है कि पूरी तरह से अगर एक देखा जाए तो मैं परिणामकारक शरण गमन कर रहा हूँ.
But don't believe everything Subhuti says.
तो सुबुति जो कुछ कहते हैं हर एक बात पर विश्वास मत कीजिए.
Don't imitate everything Subhuti does.
तो सुबुति जो कुछ करते हैं उन सभी बातों की नकल मत कीजिए.
Because sometimes he's not going for refuge.
लेकिन कभी कभी वे शरण गमन नहीं करते.
So you can't rely completely on Subhuti.
तो आप सुबुति पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते.
You might be able to rely on Kumarajiv.
तो हो सकता है कुमारियों पर थोड़ा आप निर्भर हो सकते.
You can rely on him a little bit.
तो थोड़ा उन पर निर्भर हो.
But yes, you can't go for refuge to our order, for instance.
तो एक उदाहरण के रूप में देखा जाए तो संघ को आप शरण हमारे संघ को आप शरण नहीं जाता.
Going for refuge means placing your full, complete, total confidence.
तो शरण गमन करने का मतलब होता है कि आपका पूरा जो विश्वास है उसमें रखना.
So the sangha that you can place your complete confidence in is the sangha that consists of those who've broken ignorance.
तो ऐसा संघ जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास रख सकते हैं तो ऐसे लोग होते कि जो भी अज्ञान है उन्होंने उसको नष्ट किया.
It consists of those who have prajna.
वे ऐसे लोग होते हैं जिनमें प्रज्ञा होती है.
Not just prajna in the audience, but who have prajna inside themselves.
तो जो श्रोताओं में प्रज्ञा बैठे वो नहीं तो सही में हमारी अंतर्दृष्टि प्राप्त
होती है. The sangha you can go for refuge to is the sangha in which people have destroyed ignorance.
तो ऐसे संघ को आप शरण जाते हैं वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अज्ञान को नष्ट किया.
Because they destroyed ignorance, they're just going towards the Buddha. Without even any effort.
तो उन्होंने अज्ञान को नष्ट किया है इसलिए किसी भी प्रकार का प्रयास न करते हुए भी वे बुद्ध की तरफ जा रहे हैं.
But they can't fall back.
वे पीछे नहीं आ सकते.
They can't go back from going for refuge.
तो शरण गमन करने से वे कभी पीछे नहीं आ सकते.
You could say they are going for refuge. That's what they are in themselves.
तो आप ये कह सकते हैं कि वे ही परिणाम कारक वे ही शरण गमन है वे आगे बढ़ रहे हैं.
These are what are called in Buddhism the Aryas.
और बुद्ध धर्म के अनुसार इनको आर्य कहते हैं.
They're the people who have gained prajna.
ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रज्ञा की प्राप्ति की है.
Or as I was saying last night, the people who gained vipassana.
तो जैसे कि कल रात मैंने कहा है ऐसे लोग हैं जिन्होंने विपश्यना प्राप्त की है.
They're the stream entrance.
वे श्रोता पन्न है.
They've entered the stream that leads to the Buddha.
तो ऐसे स्रोत में उन्होंने प्रवेश किया है जो स्रोत उन्हें बुद्ध की तरफ ले जाता है.
And these form the real sangha.
और इससे सही संघ की निर्मिति होती है.
And it's the ideal society.
और यही आदर्श समाज है.
It's the society of all those who are really going for refuge.
और ये ऐसा समाज होता है जहाँ सभी लोग सही मायने में सही शरण गमन कर रहे हैं.
So this is what sangha is, ultimately speaking.
अगर अंतिमता देखा जाए तो इसी को ही संघ कहते हैं.
This is what we're aiming at.
और यही हम सभी का उद्देश्य है.
They're in perfect harmony, they form the ideal society.
तो परिपूर्ण सुसंवादिता वह होती है एक आदर्श समाज की निर्मिति वह होती है.
So our job is to turn cultural going for refuge into provisional going for refuge.
तो हमारा काम यह होता है कि जो सांस्कृतिक शरण गमन है उसको तात्कालिक शरण गमन में हम परिवर्तित करें.
To bring about the provisional sangha.
तो एक तात्कालिक जो है इस प्रकार का संगम निर्माण कर सके.
It's then to transform the provisional sangha into the effective sangha.
और ये तात्कालिक संघ जो है उसको परिणामकारक संघ में फिर हम परिवर्तन.
And then to convert the effective sangha into the real sangha.
और ये परिणामकारक शरण गमन जो है उसको सही संघ में हम परिवर्तित.
So we need to be moving from one level to the next.
तो एक स्तर से दूसरे स्तर तक हमें आगे बढ़ना होता है.
And this is done by going for refuge more and more deeply.
और ये हम शरण गमन अधिक अधिक गहराई से कर 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 सकते हैं.
So we've seen what sangha is.
तो संघ क्या है ये हमने देखा है.
And but why do we need sangha?
हमें संघ की जरूरत क्यों है?
You need sangha.
आपको संघ की जरूरत है.
Every one of you needs to participate in Sangha if you want to bring these ideals into existence.
अगर इन आदर्शों को आप निर्माण करना चाहते हैं तो आप में से हर एक व्यक्ति को संघ में सम्मिलित होना पड़ेगा, संघ में आना पड़ेगा.
You need Sangha for progress as a human being.
एक मानव के रूप में अपनी प्रगति करने के लिए आपको संघ की जरूरत है.
From Sangha you will get the support, the encouragement, the friendship you need to make progress.
तो प्रगति करने के लिए संघ से आपको एक मदद होगी, एक प्रोत्साहन मिलेगा, उससे आप आगे बढ़ सकेंगे.
You need the Sangha to change society.
आपको समाज में परिवर्तन लाने के लिए संघ की जरूरत है.
You need Sangha for a richer and more satisfying human life.
आपको संघ की जरूरत है ताकि बहुत ही समृद्ध और बहुत ही संतोषजनक जीवन यापन करने.
You need this experience of delight, of communication, of maitri.
तो मैत्री का बहुत ही मतलब एक आनंददायी, बहुत ही खुशी देने वाला ऐसा संपर्क आपको चाहिए होता है.
This is the purpose of NNBY.
और यही NNBY का उद्देश्य है.
It's to form a large sangha all over India.
तो पूरे भारत वर्ष में एक बड़ा संघ निर्माण करें.
To form small sanghas as part of that larger sangha.
और एक छोटे संघों के निर्माण करें जो एक बड़े संघ के हिस्सा होगी.
We want sanghas all over India.
हम पूरे भारत वर्ष में ऐसा संघ चाहते हैं.
Where people are coming together to practice the Dhamma, to help each other make progress in life and in Dhamma.
तो वहाँ लोग धम्म के आचरण के लिए आएंगे और इस प्रकार से लोगों को भी धम्म में प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे.
And coming together to work to spread the Dhamma.
और इकट्ठा आकर धम्म का प्रचार करने के लिए वे कार्य करेंगे.
And to come together to help those who are suffering.
और इकट्ठा आकर जो लोग दुख में हैं, उनको मदद करने के लिए वे कार्य करेंगे.
So the question is, how do you form Sangha?
फिर सवाल यह है कि आप संघ की निर्मिति किस प्रकार से करते हैं?
How do you form Sangha? How do you come together in Sangha?
आप संघ में किस प्रकार से इकट्ठा आते हैं?
How do you make a Sangha grow?
आप किस प्रकार से संघ को विकसित करने के लिए मदद करते हैं?
So the Buddha has some very clear advice about this.
इसके लिए बुद्ध ने बहुत ही स्पष्ट रूप से उपदेश दिया.
So this is something quite important for you to be aware of.
तो इसके बारे में जागरूक रहना आपके लिए बहुत ही जरूरी है.
It's something that you can really put into practice.
ये ऐसी बात है जो सही में आप आचरण में ला सकते हैं.
He talks about the four. The Sanskrit word is sangraha vastus.
तो उन्होंने चार संग्रह वस्तु के बारे में बात की है.
Sangraha vastuni is the Sanskrit, yeah.
संस्कृत में संग्रह वस्तुनि
है. So these are the elements or the things, the factors that draw people together.
तो ये इस प्रकार की चीजें हैं, तत्व हैं जो लोगों को इकट्ठा लाती हैं.
If you want to make a community, you need to use these four factors.
अगर आप संघ बनाना चाहते हैं तो ये चार चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी.
So think about these.
तो इनके बारे में आप सोचिए.
Look at them in your experience here.
आपका यहाँ जो अनुभव है उस अनुभव में इस बात को आप देखिए.
Think how you might use them when you go back wherever you're going.
तो जहाँ कहीं भी आप वापस जाएंगे उसके बारे में सोचिए कि वहाँ आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं.
You need them to form yourselves into a sangha.
तो आपको उसकी जरूरत है ताकि स्वयं को आप संघ में शामिल कर सके.
And you need them to draw more and more people into the sangha.
और संघ में अधिक से अधिक लोगों को लाने के लिए उनकी आपको जरूरत पड़ेगी.
I've been impressed by some of the people coming from different states outside Maharashtra.
तो महाराष्ट्र के बाहर के राज्यों से जो लोग यहाँ आ रहे हैं उससे मैं बहुत ही प्रभावित हो गया.
Just to take one example, yesterday I saw the people from Rajasthan.
तो एक उदाहरण लिया जाए तो कल मैं राजस्थान के लोगों को मिला.
And I was very, very impressed by their spirit.
और उनकी जो भी मतलब प्रेरणा है उससे मुझे बहुत ही प्रभावित हो गया.
There are hardly any Buddhists in Rajasthan.
और राजस्थान में शायद ही अभी कोई बौद्ध हो.
And it's a very, very backward state in many ways.
और बहुत सारे अर्थों से देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा हुआ ये राज्य है.
There's a lot of casteism in particularly Western Rajasthan.
और खासकर पश्चिम राजस्थान में बहुत अधिक जातिवाद.
I believe it's one of the worst states in India.
और मुझे लगता है कि भारत का सबसे बुरा इस प्रकार का वो वहाँ राज्य है.
All the tourists go there.
तो सारे जो टूरिस्ट हैं वहाँ जाते हैं.
They think, oh, Rajasthan is wonderful.
और वो कहते हैं कि राजस्थान कितना वंडरफुल है.
But if you're a Dalit in Rajasthan, you don't think it's a wonderful place.
लेकिन राजस्थान में अगर आप दलित हैं, तो आप नहीं सोचेंगे कितना अद्भुत ये राज्य है.
So they were sort of there's just a few of them.
तो वो कुछ लोग हैं वो.
And they were discussing how they can bring more and more people to their sangha, to their work.
तो उनका जो संघ है कार्य उसमें अधिक से अधिक लोगों को कैसे लाया जा सकता है उसके बारे में वे चर्चा कर रहे हैं.
So this is the answer for them, this is the answer for others.
तो ये उनके लिए एक जवाब है और यही अन्य लोगों के लिए भी एक जवाब है.
So what are these four संग्रह वस्तुनीस?
तो ये चार संग्रह वस्तुनी कौन से हैं?
The first is dana.
तो पहली बात जो है वो दान है.
The second is priyavadita.
और दूसरी बात जो है प्रियवादिता है.
The third is अर्थचार्य.
और तीसरा जो है अर्थचार्य है.
And the fourth is समानार्थता.
और चौथी बात जो है समानार्थता.
That's all in Sanskrit.
ये सारा संस्कृत में है.
So dana means dana.
दान यानी दान.
Priyavadita means loving speech, kindly speech.
और प्रियवादिता मतलब बहुत ही प्रिय वाचा, अच्छी वाचा.
अर्थचार्य means action that helps people, that's beneficial to others.
अर्थचर्या मतलब इस प्रकार की कृति जिससे औरों को मदद होती है.
समानार्थता means being consistent.
समानार्थता का मतलब होता है consistent.
Consistent. So that your actions are the same as your words.
तो इसका मतलब ऐसा होता है कि जो भी आप कहते हैं वैसी आप कृति करते हैं.
Exemplification, it's sometimes said.
आप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं.
So what you preach is what you practice.
तो जो भी आप बताते हैं उसी का आप आचरण भी करते हैं.
So let's look at these each in turn.
तो एक एक करके इन चीजों की तरफ हम देखेंगे.
But first of all, dan.
तो सबसे पहले दान.
Let's just imagine somebody gives you something.
कल्पना कीजिए कि कोई आपको कुछ देता है.
Somebody gives you a flower.
कोई आपको फूल देता है.
Somebody gives you a sweet.
कोई आपको मिठाई देता है.
I don't know, somebody gives you a kurta.
हाँ, या कोई आपको कुर्ता दे देता है.
How do you feel?
आपको कैसा लगता है?
At the back there, how do you feel if somebody gives you something?
अगर कोई आपको कुछ देता है तो आपको कैसा लगता है?
Yeah? अच्छा लग रहा? Yeah, you feel happy.
तो आपको अच्छा लगता है?
When somebody gives you something, it opens your heart.
अगर कोई आपको कुछ देता है जिससे आपका हृदय खुल जाता है?
Well, you can't resist.
तो आप उसको रोक नहीं सकते?
You feel that they care about you.
आपको लगता है कि वो आपका ख्याल रखते हैं?
It can be something quite small.
वो बहुत छोटी ऐसी बात हो सकती है.
But if people give to you, you respond.
तो अगर कोई आपको कुछ देता है तो आप प्रतिसाद देते हैं.
So dan is a way of building sangha.
तो दान ये संघ निर्माण करने की चीज है.
We should be giving each other things all the time.
तो हर समय हमने लोगों को कुछ चीजें देते रहना चाहिए.
We should all be exchanging our shirts.
तो हमने जो हमारे शर्ट है वो एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए.
We should be giving each other anything.
तो जो भी हमारे पास है हमने एक दूसरे को देना चाहिए.
But we should express our liking for each other, our feeling for each other by giving to each other.
तो हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमें वे अच्छे लगते हैं, ये हम देकर व्यक्त कर सकते हैं.
This is a wonderful feature of Indian life.
और भारतीय जीवन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अद्भुत ऐसा अंग है.
For instance, people give garlands and flowers and so on.
तो जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो लोग जो है हार डालते हैं, फूल देते हैं.
We don't do that in England.
इंग्लैंड में हम ऐसा नहीं करते.
We just say hi.
हम केवल हाय बोलते हैं.
Come in.
हाँ, बोलते आइए.
But in India, you know, you get a garland, you get treated like a god.
तो यहाँ आपको हार देते हैं, बिल्कुल ईश्वर के समान आपके साथ बर्ताव होता है.
And you feel so delighted.
और इससे आपको बहुत ही आनंद मिलता है.
That's why so many of my friends from England and other countries in the West, they love coming to India.
और इसलिए मेरे बहुत सारे मित्र जो इंग्लैंड के हैं और अन्य देशों के, भारत में आना उन्हें बहुत अच्छा लगता है.
Just because of this spirit of dana.
तो यहाँ एक दान का बहुत ही बड़ा ऐसा भाव होता है.
At least at this very simple level.
तो कम से कम एक बहुत ही छोटे या बहुत ही आसान स्तर पर भी हम इसको देख सकते हैं.
So if you want to build sangha, give to each other.
अगर आप संघ को बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे को आप दीजिए.
Make a practice of giving to each other.
तो दान देने का एक प्रकार का मतलब आप आचरण बनाइए.
It doesn't matter what it is, just give.
अभी क्या चीज आप देते हैं महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आप दीजिए.
Yes, give what people need if you see they need something.
अगर किसी बात की जरूरत किसी को है और आपको दिखाई देता है तो उनको आप दीजिए.
If you can't see what they need, well, just give them anything, even if it's only a flower.
अगर आप ये नहीं जानते कि किस बात की उनको जरूरत है तो कम से कम जो भी आप दे सकते हैं फूल दे दीजिए.
And this will bring people together.
और इससे लोग जो है इकट्ठा आएंगे.
It will bring people into the sangha.
और इससे लोग जो है संघ में आएंगे.
If they feel you're generous towards them, they will be attracted to you.
अगर वे देखेंगे कि आप उनके प्रति बहुत ही दान की भावना रखते हैं तो वे आपकी तरफ आकर्षित होंगे.
दान इज लाइक अ मैग्नेट.
दान एक प्रकार का चुंबक है.
सो इट अट्रैक्ट्स पीपल.
वो लोगों को आकर्षित करता है.
दैट्स व्हाई इट्स अ संग्रह वस्तु.
और इसलिए उसको संग्रह वस्तु कहा गया।
It's a means of attraction.
तो एक माध्यम है आकर्षण का।
It's a way of building sangha.
तो ये संघ निर्माण करने का मार्ग है।
So think about this.
तो आप इसके बारे में विचार कीजिए।
How can you bring this into your sangha?
आप अपने संघ में ये बात कैसे निर्माण कर सकते हैं?
How can you bring this into attracting people to the sangha?
तो संघ की तरफ आकर्षित करने के लिए ये किस प्रकार से आप निर्माण कर सकते हैं?
So that's done.
ये दान है।
Then there's loving speech, kindly speech.
और फिर प्रियवादिता है, ये प्रिय वाचा है।
Well, how do you feel if somebody speaks very rudely to you?
जब आपसे कोई बहुत ही असभ्य रूप से बात करता है तो आपको कैसा लगता है?
I don't know any rude Hindi words.
अभी कोई असभ्य हिंदी शब्द मैं नहीं जानता।
My Hindi is very sweet.
मेरी हिंदी बहुत ही मीठी है।
It's very small but very sweet.
वो बहुत ही छोटी है लेकिन बड़ी मीठी है।
But you just imagine you say something to people, somebody really roughly, or somebody says something really roughly to you.
तो कोई आपसे बहुत ही मतलब बुरे ढंग से या असभ्य अभद्र रूप से कुछ कहता है।
How do you feel?
आपको कैसा लगता है?
दुखी, yeah, bad. You don't like it.
तो आपको ये पसंद नहीं आता, आपको बुरा लगता है।
But if somebody says to you, something very nice, if they say you're very welcome, do please come in, I'm very glad to see you.
अगर कोई आपसे बहुत अच्छा कहता है कि आपका बहुत स्वागत है, आप आइए, अच्छा लगा आपको देखकर।
If somebody expresses directly their liking for you, how do you feel?
अगर कोई सीधे आपसे कहता है कि वे आपको पसंद करते हैं, आपको कैसा लगता है?
Well, you're attracted, aren't you? You want to be there.
तो आप भी आकर्षित होते हैं, आपको अच्छा लगता है।
That's why I keep coming back to India.
और इसलिए मैं भारत में बार बार आते रहता हूँ।
Because people say very nice things to me.
क्योंकि लोग मेरे बारे में अच्छी बातें करते हैं।
So if you want to form a sangha, don't use ugly, rough, crude words.
अगर आप संघ निर्माण करना चाहते हैं तो जो भी भद्दे और जो भी बुरे ऐसे शब्द है उनका इस्तेमाल मत कीजिए।
In English I know lots of swear words.
और अंग्रेजी के गाली के बहुत सारे शब्द मैं जानता हूँ।
But I don't use them.
लेकिन मैं उनका प्रयोग नहीं करता।
I used to.
मैं करता था।
But I banished them from my tongue.
लेकिन अभी मेरे जो जीवा है उससे मैंने उसको बंद कर दिया।
Because they just repel people.
क्योंकि इससे लोग दूर भागते हैं।
But sometimes you hear people, every second word they use is a swear word.
लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि लोग जो दूसरा शब्द बोलते हैं तो गाली गलौज ही होती है।
As I say, I don't know any swear words in Hindi.
और जैसे कि मैंने कहा कि हिंदी का कोई भी मतलब गाली गलौज का शब्द मुझे मालूम।
And I refuse to learn any.
और मैं पढ़ना भी नहीं चाहूंगा।
Anyway, they wouldn't stick in my thick skull.
लेकिन वो मेरे मस्तिष्क में कोई जाके चिपकेंगे नहीं।
But if you use kindly words, friendly words, loving words, people will be drawn to you.
अगर आप प्यार से बोलते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे।
So in an event like this, we should use good words for each other.
तो ऐसे प्रसंग में जब हम इकट्ठा आते हैं तो हमने एक दूसरे के बारे में अच्छे शब्द बोलने चाहिए।
This will draw us together.
इससे हम इकट्ठा आइए पास में आएंगे।
In your own sangha, use kind words to each other.
तो आपके अपने संघ में अच्छे शब्द, प्रिय शब्दों का आप इस्तेमाल कीजिए।
And that will make a very strong relationship between you.
और इससे फिर आपस में आपके जो संबंध है और भी अच्छे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे।
Even if you've got something critical to say to each other, say it in a kindly way.
अगर आप किसी की आलोचना भी करना चाहते हैं तो बड़े प्यार से अच्छे शब्दों में आप उसको कीजिए।
And if you're trying to attract people to your sangha, they'll only be attracted if you use kind words.
अगर आप अपने संघ की तरफ किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, ये तभी हो सकता है जब आप प्रिय शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे।
If they find you're very rough, very crude, very harsh, they'll go away.
अगर आपके शब्द बहुत ही मतलब बुरे रहेंगे, कठोर रहेंगे तो आपसे दूर चले जाएंगे।
You won't attract them to the Buddha Dhamma.
आप बुद्ध धर्म की तरफ उनको आकर्षित नहीं कर
पाएंगे। You won't spread the Buddha Dhamma in your particular area.
और फिर आपका जो क्षेत्र है वहाँ बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे।
Then there's a useful or beneficial action.
और फिर जो मदद करने वाली कृति है वो आती है।
So act in ways that are helpful, that are constructive.
तो ऐसी कृति कीजिए जो मदद करने वाली है, रचनात्मक है।
Make your actions beneficial to the world around you.
तो आपके आसपास जो दुनिया है तो आपकी कृति ये लोगों को मदद करने वाली हो, ऐसी कीजिए।
Act in ways that are useful to each other.
ऐसी कृति कीजिए कि जो औरों को उसमें मदद पहुंचती हो.
Act in ways that are useful to other people outside your sangha.
तो आपके संघ के जो बाहर है उनको भी मदद होगी, इस प्रकार की कृति कीजिए.
Often people are attracted to the sangha just because people try to help them.
अक्सर लोग संघ की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि लोग उनको मदद करने के लिए प्रयास करते हैं.
They find that people are kind towards them.
वे देखते हैं कि लोग उनसे कितना प्यार से बर्ताव कर रहे हैं.
People are trying to help them.
लोग उनको मदद करने का प्रयास कर रहे हैं.
So they want to come.
और इसलिए वे आना चाहते हैं.
If you're just very rough and just not really very helpful at all, they won't come.
अगर आप बहुत ही असभ्य रहेंगे, लोगों को मदद नहीं करेंगे, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे.
Your sangha won't stay together.
आपका संघ इकट्ठा नहीं रहेगा.
If you're harsh and cruel in your actions towards each other, you won't remain together.
अगर आप बहुत ही कठोरता से, क्रूरता से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, तो आप किसी प्रकार से संघ के रूप में इकट्ठा नहीं बने रहेंगे.
So in a sangha we need to be practicing kindly action, beneficial action.
तो संघ में हमने जो भी अच्छी कृति है, मदद करने वाली जो कृति है, उसी का आचरण करना चाहिए.
Our actions need to be beneficial to each other.
हमारी जो कृति है तो इससे एक दूसरे को मदद होनी चाहिए.
And they need to be beneficial to others outside the sangha.
और हमारे संघ के बाहर जो है उनको भी उस कृति से मदद होनी चाहिए.
So then finally, exemplification.
और फिर अंतिम बात है कि उदाहरण प्रस्तुत करना.
Well, we all know that many religious people speak very big words.
हम जानते हैं कि बहुत सारे धार्मिक जो लोग हैं वे बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं.
They talk about very high states of consciousness.
और एक बहुत ही ऊंचे ऐसे मतलब जागृति की वो कोई बात करते हैं.
They talk about cosmic love.
वो बहुत ही मतलब ऐसे जो वैश्विक जो प्यार है उसकी बात करते हैं.
They talk about perfect harmony.
वे बहुत ही परिपूर्ण सुसंवादिता की बात करते हैं.
And they insult their disciples.
लेकिन उनके जो शिष्य है उनका अपमान करते हैं.
So there's no exemplification.
तो यहाँ उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया.
What they speak about isn't what they do.
तो जो कुछ वो करते हैं, बोलते हैं, वैसी उनकी कृति नहीं होती.
Well, people are not going to be attracted by that.
और इससे भी लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे.
But they're going to say fine words, but it doesn't mean anything.
तो अच्छे शब्दों से ये बोलते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है.
You so often hear this.
अक्सर आप ये बातें सुनते रहते हैं.
You know, for instance, you hear a politician.
अभी उदाहरण के रूप में राजनेता जो होते हैं.
There should be equality.
हाँ, तो समानता होनी चाहिए.
Everybody should be equal.
सभी लोग समान होनी चाहिए.
Then nobody should be suppressed by another person.
तो कोई भी दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार से दबाना नहीं चाहिए.
Then they go home and beat their wives.
फिर घर जाके अपने बीवी को मारते हैं.
So seriously, this happens.
अभी गंभीर रूप से देखा जाए तो ऐसा होता है.
So it's equality on the platform, inequality in the house.
तो समता मंच पर होती है और घर में असमानता होती है.
So it's very, very common.
तो ये बहुत ही सामान्य रूप से हम देखते हैं.
With politics, with religion, people use these fine words, like Subhuti is doing now.
तो राजनीति और धर्मों में लोग ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे अभी सुबुद्धि कर रहे हैं.
But we have to live up to our own words.
लेकिन हम जो शब्द कहते हैं उन शब्दों के स्तर पर हमने जीना चाहिए.
Our own lives need to be open.
हमारा जो जीवन है ये खुला होना चाहिए.
Publicly, one thing, पर्दे के नीचे another thing.
तो लोगों के सामने एक रहता है और पर्दे के पीछे हम दूसरे रहते हैं.
के पीछे, not नीचे, पीछे. And if you're not exemplifying what you preach, people won't be attracted.
अगर आप इस प्रकार का उदाहरण या आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो लोग आपके तरफ आकर्षित नहीं होंगे.
Be honest about yourself.
आप स्वयं के बारे में प्रामाणिक रहिए.
I'm telling you openly, I'm not perfect.
मैं खुले ढंग से आपको बता रहा हूँ कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ.
I'm not always generous.
और मैं हरदम बहुत ही दानशील भी नहीं होता हूँ.
Sometimes I say, they're mine.
कभी कभी मैं कहता हूँ कि ये मेरा है.
I don't always practice priyavadita.
और हर समय मैं प्रियवादिता जो है उसका आचरण नहीं करता.
I don't use swear words.
मैं कोई गाली गलौज तो नहीं करता.
But sometimes I go away.
लेकिन मैं कभी कहता हूँ चलो चले जाओ.
I don't always act beneficially.
और कभी कभी मैं हरदम मदद करने वाली भी बात नहीं करता.
But I'm not pretending that I'm different.
हाँ, लेकिन मैं ये बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ही अलग हूँ.
So that's the difference.
हाँ, तो यही फर्क है.
You hold up an ideal, but you don't pretend that you are that ideal.
आप कोई आदर्श अपने सामने रखते हैं, लेकिन आप ऐसा दिखावा नहीं करते कि आप बिल्कुल वो आदर्श ही है.
But you're trying to live up to that ideal.
लेकिन आप प्रयास करते हैं कि उस आदर्श के अनुरूप जीवन जिया जा सके.
You need to be an example of somebody who's making an effort to live up to that ideal.
तो आपने ऐसा उदाहरण आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि उस आदर्श की तरफ जाने के लिए कोई प्रकार से सही में प्रयासरत है.
And this example of honesty and practice effort is deeply attractive.
और इस प्रकार का जो हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जहाँ प्रामाणिकता है हम बहुत ही प्रयास कर रहे हैं कटिबद्धता ये लोगों को बहुत ही आकर्षित करता है.
So practice these vigorously.
तो आप इसको पूरी शक्ति के साथ आचरण कीजिए.
Practice dana, practice loving speech.
तो आप दान का आचरण कीजिए, प्रिय वाचा का आचरण कीजिए.
Practice kindly beneficial action.
और जो भी मतलब प्यार से लोगों को मदद करने वाली जो कृति है उसका आचरण कीजिए.
And be honest about yourself.
और स्वयं के बारे में प्रामाणिक रहिए.
But try to live up to your own ideals.
लेकिन आपके जो आदर्श है उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास कीजिए.
And if you do this together, you will really be a sangha.
अगर आप इकट्ठा ये करते हैं तो सही में आप संघ बन जाएंगे.
And you will be very, very attractive to other people.
और अन्य लोगों के लिए आप बहुत बहुत आकर्षित बन जाएंगे.
I think these should be the principles of NNBY.
और मुझे लगता है कि NNBY के ये तत्व होने चाहिए.
In a way, these are the four foundation stones of the four corners of NNBY.
तो मुझे लगता है कि NNBY के ये चार जो कोने एक प्रकार के उसके खास पिलर होने चाहिए.
I make a humble suggestion to the leaders of NNBY that you adopt these four as your basic principles.
तो एक मैं विनम्र याचना करना चाहूंगा जो NNBY के नेतृत्व करने वाले कि चार बातों को एक तत्व के रूप में भी स्वीकार.
Maybe you've got a better idea, I don't know.
अब शायद हो सकता है इससे बेहतर कोई विचार आपके पास हो.
But I humbly submit these to you.
लेकिन विनम्र रूप से मैं आपके सामने एक प्रस्तुत कर रहा हूँ.
If in NNBY you're practicing these four, NNBY will be united, harmonious and very, very attractive.
अगर NNBY में इन सब चीजों का अगर आप आचरण करते हैं तो सुसंवादिता से रहेगा, एकता से रहेगा और बहुत ही शक्ति से काम करेगा.
It'll be like a huge magnet.
एक प्रकार का एक बहुत बड़ा जैसे मानो चुंबक बन जाएगा.
And the youth of India will just be drawn to it without really knowing.
और भारत के युवा वो बिल्कुल जान भी नहीं पाएंगे लेकिन इसके तरफ बहुत ही आकर्षित हो जाएंगे.
And yes, the four sangra vastus will help you.
और चार संग्रह वस्तु आपको भी मदद करेंगे.
Because you'll have the sangha you need in order to develop.
और आपको विकास करने के लिए ये चीजें आप में होनी चाहिए.
You'll have the sangha you need to practice the dhamma.
तो जो संघ आपको चाहिए आचरण करने के लिए वो इससे निर्माण.
You'll have the sangha you need just to live a good human life.
तो इस प्रकार का संघ आपको चाहिए कि जहाँ बच्चा मानवीय जीवन जी सके.
But the four sangha vastus will help you in your work to draw more and more people into this movement.
लेकिन ये संग्रह वस्तु जो है आपको मदद करेगी कि आपके कार्य में अधिक से अधिक लोगों को आप आकर्षित कर सके.
So let's make these the watchwords of NNBY.
तो NNBY के इनको हम एक प्रकार से वॉचवर्ड बनाएंगे.
Yes, the four corners on which the strong building of NNBY is built.
ये चार ऐसे कोने होंगे जिस पर NNBY की ये मजबूत जो इमारत है वो खड़ी रहेगी.
If you do this, you'll make your own lives much more happy.
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वयं का जीवन बहुत ही सुख से भर जाएगा.
You have the support you need for your own life.
तो आपको जो आपके जीवन के लिए मदद चाहिए वो मदद आपको मिलेगी.
You'll have the delight of sangha.
आप संघ का आनंद लेंगे.
And yes, you'll help more and more people come into the Buddha Dhamma.
और अधिक अधिक लोगों को बुद्ध धर्म में आने के लिए आप मदद करेंगे.
And you'll make a real contribution to Baba Saheb's Dhamma Kranti.
और बाबा साहब के धर्म क्रांति के लिए आपका सही में योगदान होगा.
You'll make a real contribution to making India into a kind of sangha.
और सही में आपका ये भारत के लिए योगदान रहेगा कि एक प्रकार का भारत में आप संघ बनाए.
Because sangha means bandhutva.
क्योंकि संघ यानी ही बंधुत्व है.
So you'll be spreading bandhutva throughout India.
और फिर आप बंधुत्व जो है पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार से फैलाते रहेंगे.
And in that way you'll help to solve those problems of modern India that we looked at 6 days ago.
और 6 दिन पहले आधुनिक भारत की जो सारी समस्याएं हमने देखी है उन समस्याओं को छुड़ाने के लिए आपकी इस प्रकार से मदद होगी.
And you remember that Baba Saheb wanted you, the youth of India, to look at those problems and find the right solution.
और इस बात को याद रखिए कि बाबा साहब चाहते थे कि भारत के जो युवा लोग हैं इन समस्याओं को देखें और उसके ऊपर कुछ हल निकाले, उसके ऊपर कार्य करें.
And I think that forming sangha is the best contribution that you can make.
और मुझे लगता है कि संघ का निर्माण करना ये सबसे बेहतर आपका योगदान होगा।
And I believe this is what you're doing through NNBY.
और मेरा विश्वास है कि NNBY के माध्यम से यही बात आप कर रहे हैं।
Personally, I'm very, very impressed indeed by what you've achieved.
और व्यक्तिगत रूप से जो कुछ आपने प्राप्त किया है उसे देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हो गया।
I do no work.
हाँ, मैं जानता हूँ कि कार्य यानी क्या होता है।
I'm just like a man who comes to a restaurant and eats a meal.
हाँ, मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि जो रेस्टोरेंट में आता है और खाना खाता है।
You are doing the cooking, you are doing the preparation.
तो आप खाना पका रहे हैं, आप सारी तैयारियां कर रहे हैं।
And you've achieved so much.
तो आपने बहुत कुछ प्राप्त किया।
It's wonderful to see NNBY groups all over India.
और ये सही में बहुत ही अच्छा है कि भारत में अलग अलग जगह इस प्रकार के NNBY ग्रुप फॉर्म हुए हैं।
But you must do much, much more.
लेकिन आपने इससे भी अधिक अधिक करना चाहिए।
And if you form sangha through these four sangraha vastus, you will be successful.
अगर चार संग्रह वस्तु के माध्यम से अगर आप इस प्रकार से संघ निर्माण करते हैं तो आप अधिक सफलता पाएंगे।
There's no doubt about this.
इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं है।
You could say again, this is like a law of gathering.
तो एक प्रकार से आप ये एक नियम समझते हैं इकट्ठा आने का।
The Buddha's looked carefully at what builds sangha.
बुद्ध ने बड़े सावधानी से देखा कि किस प्रकार से संघ निर्माण होता है।
And he says these four sangraha vastus are what create sangha.
और उन्होंने कहा है कि चार संग्रह वस्तु है जिससे संघ की निर्मित होती है।
So remember, दान।
तो याद रखिए दान।
Loving speech।
प्रियवादिता।
Beneficial activity।
तो जो भी मदद करने वाली कृति है।
And exemplification।
और उदाहरण प्रस्तुत करना।
Practicing what you preach।
तो जो भी आप बताते हैं उसका आप स्वयं आचरण करते हैं।
If you practice these over this next year, we will fill this valley at the next parishad.
अगर आप अगले साल इसका अगर आचरण करते हैं तो ये सारा जो परिसर है हम अगले परिषद में इसको पूरी तरह से भर देंगे।
And I look forward to seeing it.
और इसको